بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخشع الباسط بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشرق كالشمس جبينا. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين. ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الطيبين الطاهرين. ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين. ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين.
ربنا صلي
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 على أحمد خير المرسلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو ماہ مبارک رمضان کے چھٹے روزے کی ادائیگی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دعا کے ساتھ نوجوان ماہ رمضان کیسے گزارے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. روزانہ مختصر اور جامع اور مختلف موضوعات کے ساتھ ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. نوجوان ماہ رمضان کیسے گزارے ہیں؟ حقیقت میں یہ بنیادی سوال ہے کہ جسے ہر نوجوان ہم سے کرتا ہے, اور اس کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس بات پہ یقین دلایا جائے کہ وہ تبدیل ہو سکتے ہیں, وہ اچھے ہو سکتے ہیں, وہ چینج ہو سکتے ہیں, ان میں پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے. اور اس کے لیے در حقیقت ان ہاتھوں کی ضرورت ہے, ان مربی ہاتھوں کی ضرورت ہے کہ جو ایک کمہار کی مانند مٹی کا جب ایک برتن بناتا ہے تو پہلے مٹی کو جمع کرتا ہے, مٹی کو جمع کرنے کے بعد اس مشین پر رکھتا ہے, اور مشین پر رکھنے کے بعد اسے آہستہ آہستہ شکل اور روپ دینا شروع کرتا ہے. جہاں اسے جتنی موٹائی کی ضرورت ہوتی ہے اسے موٹا کرتا ہے, جہاں اسے پتلا کرنا ہوتا ہے اسے پتلا کرتا ہے, آہستہ آہستہ اس کو ایک شکل دے کر اس کو مرتب کرتے ہوئے اسے فائنل صورت دے دیتا ہے. گناہوں سے پرہیز, جیسا کہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے. خوب, یہ ٹائٹل تو بہت اچھا ہے, لیکن عملی زندگی میں اس پہ عمل پیرا ہونا قدر سخت نظر آتا ہے. سخت ان معنی میں کہ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو عادت ڈال دی ہے گناہوں کی, اس لیے گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی باہر سخت گرمی ہو اور आप यहाँ पर 3 घंटे तक 2 घंटे तक एयर कंडीशन में बैठे हों, ठंडी ठंडी हवा से मुस्तफीद हो रहे हैं, अब अगर किसी काम के लिए बाहर जाना हो तो उस बाहर जाने के लिए आपको धूप की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। धूप सख्त है लेकिन अगर आप थोड़ा सा आदी हो जाएंगे धूप आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन चूंकि इंसान एक खास माहौल में होता है, खास फिजा में होता है, खास हालात के तहत जिंदगी बसर कर रहा है, उसने गुनाहों को अंजाम देने के लिए एक आदत से बना ली है, लिहाजा उसे गुनाह छोड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हकीकत निगाह से देखा जाए तो गुनाह को छोड़ना बहुत मुश्किल नहीं है। नौजवानों के लिए ये बुनियादी सवाल है कि वो गुनाहों को कैसे छोड़ें। यहाँ पर मैं तौबा के बारे में गुफ्तगू नहीं करूंगा, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम तौबा के बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हम कुरान से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से एक उसूल पेश करना चाहते हैं कि किस तरह गुनाहों से परहेज किया जाए। पहला काम जो इंसान गुनाहों से परहेज के लिए कर सकता है वो गौर व फिक्र है कि इंसान गौर फिक्र के जरिए से सोचे समझे कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये 2 लम्हे का मजा और इंजॉय मेरे लिए किस बदबख्ती और तारीकी और अंधेरे का सामान लेकर आएगा, रोज़ क़यामत मुझे इस गुनाह के बदले में क्या चीज़ हासिल होने वाली है, और अगर मैं इस गुनाह को छोड़ दूँ तो फिर इसके नतीजे में मुझे क्या सवाब और क्या नेमतें खुदावंद आलम की नसीब होने वाली हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों, ये 6ठा रोज़ा है, मुझे नहीं मालूम कि आप किस वक्त में ये गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपने अभी से ये इरादा करना है और ये मुसम्मम इरादा करना है, पक्का इरादा करना है कि अपने आप को कवि बनाते हुए, मुस्तहकम बनाते हुए गुनाह को छोड़ना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक नौजवान के लिए बेहतरीन उस्वा है कि किस तरह एक बुराई के माहौल में रहते हुए, बादशाह के महल में रहते हुए, तमाम नेमतों की रेल पेल होने के बावजूद, तमाम आसाइशों की फरावानी के बावजूद, तमाम नेमतों की वाफिर मकदार में मौजूदगी के बावजूद, एक नौजवान जिसके पास तमाम चीज़ें, जवानी, उसकी कुव्वतें, उसकी सलाहियतें उरूज पर हैं, वो किस तरह अपने आप को गुनाहों से रोकता है। अगर हम आइडियल बना ले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को तो फिर हमारे लिए अमल करना आसान होगा। लेकिन चूंकि हमने कुरानी हीरोज को सिर्फ तिलावत के हद तक महदूद किया हुआ है, यही वजह है कि कुरानी हीरोज की जिंदगी और उस जिंदगी के नतीजे में हासिल होने वाला तकवा हमें हासिल नहीं हो पाता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान हैं, महल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ खुदा की इबादत की जानिब मुतवज्जे हैं, और जब उन्हें गुनाह की पेशकश की जाती है सूरह यूसुफ में वरा वदत हुल्लती हुआ फी बैतहा, हजरत यूसुफ जिस घर में थे वहाँ एक औरत उन्हें मुरावदा करती है। मुरावदा कुरान इस्तेलाह है, मुरावदा का मतलब ये किसी बहुत बड़े काम को, बहुत बड़े गुनाह को बहुत ही छोटे और आसान शक्ल में बना के पेश करना। शैतान भी यही करता है, इंशाल्लाह जब शैतान के मौजू में गुफ्तगू करेंगे तो आपके सामने बयान फरमाएंगे कि शैतान किस तरह इंसान को गुमराह करता है और किस तरह इंसान को तौबा करनी चाहिए, हकीकी तौबा क्या है। बहरहाल हजरत यूसुफ के सामने एक बहुत बड़े गुनाह को एक बहुत छोटा बना के पेश किया जाता है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, मुरावदा यानी बतदरीज ग्रेजुअली इंसान बुराई की तरफ उसको खींचना। सूरह यूसुफ में इरशाद रब्बुल इज्जत है, मुरावदत हुल्लती हुआ फी बैतिह अन नफ्सिह वगल्लत अलअबवाब वकालत हैत लका, दरवाजे बंद कर दिए, कहा कि ये काम करो, दावत दी गई है, शहवत भी है, तन्हाई भी है, दरवाजे बंद हैं, देखने वाला कोई नहीं, सरजनिश करने वाला कोई नहीं, बादशाह की बीवी गुनाह की तरफ दावत दे रही है। लेकिन अब हजरत यूसुफ का जवाब सुनिए, 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप ये नजरी तौर पर यानी फिक्री तौर पर हैं, और 5वें स्टेप में इंसान जो है वो वहां से फरार करता है। पहले 4 स्टेप को अंजाम दीजिए, पहले 4 मराहिल को तय कीजिए, उसके बाद इंसान में सलाहियत पैदा होती है कि इंसान गुनाहों से परहेज करे, दूर हो, भाग जाए वहां से, उस माहौल को छोड़ दे ताकि वो माहौल, वो गुनाह, वो असरात उसे अपने पंजों में दबोच ना ले। सबसे पहली चीज का काला माजल्ला, हजरत यूसुफ का पहला जुमला ये खुदा की पना, यानी जब भी इंसान ये देखे कि शैतान वर्गला रहा है, नफ्स की ख्वाहिशत इंसान को गुनाह की तरफ ले जा रही है, फौरन खुदा को याद करे। और खुदा को याद, इन्हें खुदा की पनाह में आना, खुदा की पनाह में आना यानी खुदा को सिद्क दिल से कबूल करते हुए खुदा की पनाह तलब करना। उसकी मिसाल ऐसा ही है, आप खड़े हों और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो आप किसी पनागाह की तलाश में जाते हैं ताकि आप उस पनागाह के नीचे खड़े होकर बारिश से बच सकें। लेकिन अगर एक शख्स हो वो बारिश के दरमियान खड़ा रहे और ये कहे जनाब मैं पनाह तलब करता हूँ बारिश से, मैं पनाह में जाना चाहता हूँ, खड़ा रहे तो क्या वो बारिश में भीगने से बच जाएगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ दावा किया है, अमल नहीं किया। लिहाजा अमली तौर पर इंसान खुदा की पनाह तलब करे कि ए खुदा काला माअज़ल्लाह, ए खुदा मैं पनाह तलब करता हूँ। इस्तआदा यानी खुदा की पनाह को तलब करना कि ए खुदा मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, मैं इस गुनाह से भागना चाहता हूँ। यही हजरत यूसुफ है जो ये कहते हैं खुदा ये गुनाह की तरफ जो दावत दी जा रही है इससे बेहतर मुझे कैद में जाना पसंद है, मैं कैद में जाऊं मेरा ईमान सालिम रहे, साबित रहे, महफूज रहे, मुस्तहकम रहे, ये बात मुझे कबूल है, बनिस्बत के मैं आजाद रहूं और मेरे गुनाह ज्यादा हों और मेरा ईमान कमजोर हो, मैं खुदा से दूर हो जाऊं। तो पहला नजरी उसूल फिक्री उसूल हजरत यूसुफ ने दिया कि खुदा को याद करो, काला माअज़ल्लाह पहला उसूल ये। उसके बाद का इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, दूसरा यह है कि खुदा की रुबूबियत को याद करो, खुदा ने तुम्हें पाला, खुदा ने तुम्हें परवान चढ़ाया, खुदा ने तुम्हें हयात दी, खुदा ने तुम्हें वजूद दिया, खुदा ने तुम्हें नेमतें दी। इसीलिए मासूम फरमाते हैं हर नेमत का कमतरीन शुक्र यह है कि उससे खुदा की नाफरमानी ना की जाए। यह आंख जो खुदा ने दी है कमतरीन शुक्र यह है कि इसे गुनाहों में इस्तेमाल ना किया जाए, जबान को गुनाहों में इस्तेमाल ना किया जाए, कानों से कोई हराम काम हराम बात ना सुनी जाए ना किया जाए। अजीजों दोस्तों नौजवानों दूसरा उसूल यही खुदा को रब माना जाए, उसकी रुबूबियत की जाने, खुदा ने कितनी नेमतें दी हैं। और तीसरा उसूल यह है अहसन मथवाया, खुदा की नेमतों को याद करें, खुदा ने कितनी नेमतें दी हैं, ये नेमतें जो खुदा आलम ने हमारे इर्तका के लिए हमारे कमाल के लिए हमें बेहतर और कामिल और जामे बनाने के लिए दी हैं, हमें चाहिए कि उनको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। और उसके बाद चौथा फिक्री नुक्ता जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में यह बयान किया है इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, यानी इंसान खुदा की पनाह तलब करे, खुदा की रुबूबियत को याद करे और उसके बाद खुदा की नेमतों का तज़किरा करे कि खुदा ने इतनी नेमतें दी हैं, उसके बाद आखिरत अंदेश हो यानी इंसान अपनी आखिरत को याद करे कि ये जो मैं गुनाह कर रहा हूँ दर हकीकत अपने ऊपर जुल्म कर रहा हूँ और जुल्म करने वाले कभी फला नहीं पा सके। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक कोई शक नहीं इस बात में जो जुल्म करेगा वो कभी फला नहीं पा सकता। ये चार स्टेप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत में हमें मिलते हैं कि इस तरह गुनाहों से परहेज किया जाए, फरार किया जाए, दूर किया जाए। और उसके बाद जब देखते हैं कि नहीं गुनाह का इसरार बाकी है, गुनाह मुसलसल हो रहा है और गुनाह की तरफ मुसलसल दावत दी जा रही है, तो फिर वहां से फरार करते हैं, फिर वहां से दामन बचाते हैं, फिर वहां से पीठ मोड़कर अच्छाइयों की तरफ सफर करते हैं। दोस्तों ये बंद दरवाजे हमेशा हर वक्त हमें अपनी जिंदगी में नजर आएंगे, जहां कोई नहीं होगा, जहां देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, कहने वाला, सरजनिश करने वाला, वाज़ो नसीहत करने वाला कोई नहीं होगा। अगर दिल का यूसुफ बेदार है, अगर दिल का जमीर बेदार है और वो यूसुफ जो अपने तमाम हुस्न जमाल रानाई ताकत कुदरत जवानी की ताकत के साथ मालामाल होने के साथ साथ अगर खुदा को याद करता है तो जिस तरह हजरत यूसुफ ने अपने गुनाह अपने आप को गुनाहों से बचाया, उसी तरह आप भी अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं। ये चार नजरी उसूल, उसके बाद पांचवा अमली उसूल ये है कि गुनाहों से दूर हो जाओ, गुनाहों के माहौल को छोड़ दो। दोस्तों आदत डालिए, कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ का अपना नतीजा है, तवस्सुल का अपना असर है, लेकिन ये दुआ ये नतीजा ये तड़प ये लगन उसी सूरत में होगी जब आप छोड़ना चाहेंगे, जब आप کسی ہدف کو اختیار کرنا چاہیں گے. وجہ یہ کہ ہم چینج نہیں ہونا چاہتے. ماہ رمضان چینج لانا چاہتا ہے, چینج پیدا کرنا چاہتا ہے, شوق دلاتا ہے, رغبت دلاتا ہے. لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرے, چاہتا ہے کہ وہ اپنے خدا کی جانب اپنے سفر کو باقی رکھے, تو یہ کام سب سے زیادہ جوانی میں آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جوان ہے, طاقت و قدرت میں نورانیت اور پاکیزگی اور قداست ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے, ابھی جو لگایا گیا ہے درخت وہ ایک آدمی سے اکھڑ جائے گا. ابھی آپ نے ایک درخت لگایا ہے, وہ آپ خود بھی ہلا کر نکال سکتے ہیں, مگر کچھ زمانہ گزر جو گیا, لیکن کچھ زمانہ گزر جائے گا, جڑیں مستحکم ہوتی رہیں گی, مضبوط ہوتی رہیں گی, بہت سو سے مل کر نہ ہل پائے گا وہ, پھر بہت سارے لوگ بھی اسے ہلانا چاہیں گے تو وہ نہیں ہل سکتا. گناہ جو شیطان نے ہمارے دل کے اندر اس کی جڑیں مضبوط کی ہیں, ماہ مبارک رمضان میں اس شجر گناہ کو, شجر خبیثہ کو نکالنا جڑوں سخت آسان ہے. لیکن اگر ماہ رمضان گزر گیا اور ہم نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کی کہ ہم گناہ کو چھوڑ سکیں, توبہ کر سکیں, خدا کی جانب لوٹ سکیں, تو پھر ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ کام سخت ہو جائے گا. اس لیے کہ شیطان قید سے آزاد ہو چکا ہوگا اور وہ مسلسل میں گناہ کی طرف جائے گا. بہترین وقت ہے کہ شیطان قید میں ہے, شیطان قید میں کر دیا, زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے. لہذا طاقت و قدرت پیدا کرنا, خدا کی طرف لو لگانا اور نوجوانی میں گناہوں کو دور کرنا عملی طور پر, فکری طور پر بہت آسان ہے دوستوں. بس خلاصہ یہ کہ انسان اگر کوشش کرے تو وہ گناہ کو چھوڑ سکتا ہے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خدا کی پناہ, دوسرا یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت کو یاد کرے, تیسرا یہ خدا کی نعمتوں کو یاد کرے, اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اپنی عاقبت کو, آخرت کو, اپنے اینڈ انجام کو یاد کرے, اس کے بعد فرار کرے. خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے آرائش کا آپ کے سامنے پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.